A special visitor here today. I want to introduce you to Hari Willow Prabhu. Hari Willow Prabhu has come from Mayapur, and next week he will be teaching the next module in Bhakti Vaibhav. He's an old friend of mine from Dubai. He was initially based in Dubai. He gave up everything there, came with his wife and family, and they're based in Mayapur. And he's been teaching now Mayapur Institute for a few years now. So you're very fortunate to have this association next week. Okay? So we're going to go on to Srimad Bhagavatam. We will read the verse which is on the board. It's Canto 9, Chapter 13, the Dynasty of Maharaj Nimi, text number 27. Ete vai maitila rajan.
Yeah. Siddhartha and Vatayama Tattvare, this divine grace is in the Vedanta, the Swami Shri Prabhupada Jaya. Shri Prabhupada Ki, Shraddha, Etay, Yesare, Vai, Nisande, Vantila, 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 Atma-vidya vishala,
Atma-vidya
vishala, में पटू
योगेश्वर प्रसादेना,
योगेश्वर
प्रसादेना,
भगवान कृष्ण जो योगेश्वर है उनकी कृपा से
बंधन
मुक्ता
सबके
सब भौतिक जगत के
वैध
भाव से मुक्त हो गए विदेशु अभी घर पर रहते हुए भी भगवान शुक्र गोस्वामी ने कहा हे राजा परीक्षित विभिन्न वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे अतः वे घर पर रहते हुए भी संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो गए कृपया दोहराएं शुक्र
गोस्वामी ने कहा
हे राजा परीक्षित विभिन्न वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु
थे
अतः वे घर पर
रहते हुए भी
संसार के द्वंद्वों
से
मुक्त हो गए
तात्पर्य
ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है चैतन्य सरिता में का कथन है द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधन एहि भाल एहि मन एहि सब भ्रम द्वैत जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई तथा बुराई दोनों एक सी है अतः इस संसार में अच्छा बुरा सुख दुख के अंतर करना व्यर्थ है क्योंकि ये दोनों मनोधर्म है चूंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदायी है अतः कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है मुक्तात्मा प्रकृति के तीन गुणों के प्रभावों से ऊपर रहने के कारण हर परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है वह तथाकथित सुख दुख सहन करके कृष्ण भक्त बना रहता है इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख आगमपायिनो नित्यस्तां स्थितिषु सुभारतः हे कुन्ते पुत्र सुख तथा दुख का स्थायी प्रकट होना और काल क्रम से उनका अंतर्धान होना जाड़े तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है हे भरत पुत्र ये द्वे बोध से उत्पन्न होते हैं अतः मनुष्य को विचलित भाव से सहन करना सीखना चाहिए जो लोग मुक्त हैं वे भगवान की सेवा करने के कारण दिव्य पद पर होने से तथा कभी दुख सुख की परवाह नहीं करते वे जानते हैं कि ये परिवर्तन श्री ऋतुओं के समान है जो शरीर के स्पर्श द्वारा अनुभूति क्रम में है सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं अतः पंडित को अर्थात विद्वान व्यक्ति को उनकी परवाह नहीं रहती कहा गया है गता सुन अगता सुन नानु सोचती पंडिता शरीर प्रारंभ से मृत रहता है क्योंकि ये पदार्थ का पिंड है इसमें सुख दुख की अनुभूति अनुभूति नहीं होती क्योंकि शरीर के भीतर का आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है इसलिए उसे सुख दुख भोगना पड़ता है किंतु ये तो आते जाते रहते हैं यहाँ ये ज्ञात होता है कि मिथिल वंश में उत्पन्न सारे राजा मुक्तात्मा पुरुष थे जो इस जगत के तथा कथित सुख दुख से अप्रभावित थे इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंध के अंतर्गत महाराज निधि के वंशावली शीर्षक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ श्लोक संख्या 13 का अनुवाद इस प्रकार है असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था अतः वह वैदेह कहलाया अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वह मैथिल कहलाया और उसने राजा मैथिली के रूप में जो नगर निर्मित किया वह मिथिला कहलाया श्लोक संख्या 14 हे राजा परीक्षित मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया उदावसु से नंदीवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवराज उत्पन्न हुए देवराज से प्रहिद्रथ कामक पुत्र हुए और प्रहिद्रथ के पुत्र महावीर हुए जो सुधृति के पिता बने सुदिति के पुत्र ऋषिकेतु कहलाए और ऋषिकेतु से हर्यवर्ष हुए, हर्यवर्ष के पुत्र मरु हुए, मरु के पुत्र प्रतिपक हुए और प्रतिपक के पुत्र कृतार्थ हुए, कृतार्थ से देवमीठ, देवमीठ से विश्रुत एवं विश्रुत से महाधृति हुए, महाधृति से कृतिराज नामक पुत्र हुए, कृतिराज से महारोमा हुए, महारोमा से स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा से ऋष रोमा उत्पन्न हुए, ऋष रोमा से शीर्ष जिनका नाम जनक भी था नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जब खेत जोत रहे थे तो उनके हल शीर के अग्र भाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह वे शीर ध्वज कहलाए। शीर ध्वज के पुत्र कुश ध्वज हुए और कुश ध्वज के पुत्र राजा धर्म ध्वज हुए, जिनके कृत ध्वज तथा मित्र ध्वज नाम के दो पुत्र हुए। हे महाराज परीक्षित, कृत ध्वज के पुत्र केशी ध्वज हुए और मित्र ध्वज के पुत्र खांडित्य थे। कृत ध्वज के पुत्र अध्यात्मिक ज्ञान में पटु थे और मित्र ध्वज के पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खाणिक्य केशी ध्वज के भाई से भाग गए। केशी ध्वज के पुत्र भानुमान थे और भानुमान के पुत्र शतद्युम्न हुए। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था। शुचि से संद्वाज उत्पन्न हुए और संद्वाज के पुत्र उच्च केतु थे। उच्च केतु के पुत्र अश थे और अश के पुत्र पुरजीत हुए। पुरजीत के पुत्र अरिष्ट नेवी हुए जिनके पुत्र श्रुतायु हुए। श्रुतायु के पुत्र सुपाशव थे और उनके पुत्र चित्रथ थे। चित्रथ के पुत्र शेमाधी थे जो मिथिला के राजा बने। शेमाधी के पुत्र समरथ हुए और उनके पुत्र सत्यरथ हुए। सत्यरथ के पुत्र उपगुरु और उपगुरु के पुत्र उपगुप्त हुए जो अतिदेव के अंशरूप थे। उपगुप्त के पुत्र वसवंत थे जिनके पुत्र युयुध हुए। युयुध के पुत्र सुभाषण, सुभाषण के पुत्र श्रुत, श्रुत के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय थे। विजय के पुत्र ऋत थे। और फिर आज का श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, अतः वे घर पर रहते हुए भी संसार के बंधों से मुक्त हो गए।
ओम ज्ञान
Krishna, Krishna, it was about the Yagyas and
Maharaj Nimi wanted to do a yagya, and Vashishta asked him to wait, but he couldn't wait. So Vashishta got angry and cursed him that he would fall down, in other words, that he would die.
जैसे कि आपने सुना कि महाराज निमि और वशिष्ठ मुनि में किस प्रकार विवाद हुआ. वशिष्ठ मुनि ने महाराज निमि को इंतजार करने के लिए कहा जब तक वो लौट के नहीं आते यज्ञ प्रारंभ ना करें, परंतु महाराज निमि इंतजार नहीं कर सकते, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया और इसके बाद आके वशिष्ठ मुनि ने उनको श्राप दिया कि उनकी तुरंत मृत्यु हो जाए.
Caused Nini Raj to curse Vashishta that he would also fall down dead. So they were both dead.
तो महाराज निमि ने भी पलट कर वशिष्ठ मुनि को श्राप दिया कि तुम्हारा भी तुम भी ये शरीर छोड़ दो. तो दोनों की मृत्यु हो गई.
But then it was arranged they brought Vashishta back to life and they were about to bring Nini back to life and said, no, I don't want to take birth again. I don't want to come in this material world.
और उसके बाद इस प्रकार का प्रबंध किया गया कि वशिष्ठ मुनि को वापस जीवित किया गया और महाराज जी को भी जीवित करने वाले थे, परंतु उन्होंने मना कर दिया कि मैं वापस इस भौतिक देह में नहीं आना चाहता.
So they blessed him that he could become an eternal associate of the Supreme Lord in the spiritual world.
और फिर सभी की ऋषिगण देवताओं की कृपा से वो आध्यात्मिक जगत में ब्रह्मांड के नित्य परिकर के रूप में स्थित हुए.
Then from his body they churned and they produced janak.
और उनके शरीर का फिर मंथन करके जनक की उत्पत्ति हुई.
And janak of course is the father of Sita. And from janak so many great kings, and it described here that they were all liberated souls.
और जनक से ही आगे के वंशावली में बहुत सारे महान राजा आए, जिस प्रकार का वर्णन अभी हमने सुना.
They all knew their spiritual identity.
सब के सब को अपनी आध्यात्मिक स्थिति ज्ञात थी.
So Srila Prabhupada in his purport he simply discusses about the nature of a liberated soul, how they're indifferent to material conditions like happiness and distress.
श्रीला प्रभुपाद इसके तात्पर्य है एक आत्म साक्षात्कार में स्थित जो आत्मा है उसके स्वभाव के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वह भौतिक जगत के द्वंद से परे रहता है.
In the purport, Srila Prabhupada quotes a verse from the Chaitanya Charitamrita, from the pastimes of Lord Chaitanya when he was residing in Jagannath Puri.
तात्पर्य है चैतन्य चरितामृत से श्रीला प्रभुपाद एक श्लोक उदित करते हैं अंत्यलीला से जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे.
सो सनातन गोस्वामी हैड कम फ्रॉम वृंदावन टू गेट सम एसोसिएशन विद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु.
सनातन गोस्वामी वृंदावन से आए थे महाप्रभु का संग प्राप्त करने के लिए.
एंड इन हिज पैसेज टू कम टू पुरी फ्रॉम वृंदावन ही हैड टू क्रॉस थ्रू द झारखंड फॉरेस्ट.
और पुरी पहुंचने के लिए वृंदावन से उन्हें झारखंड के जंगलों से गुजरना पड़ा
था. While he was coming through the forest, he drank some water, which resulted in him developing some skin disease.
और जब उन जंगलों में जब उन्होंने कहीं का पानी पिया तो उस पानी से उनको चर्म रोग उत्पन्न हो गया.
And the nature of the skin disease was that he developed sores all over his body, and they were losing also blood.
और उस बीमारी के कारण उनके पूरे के पूरे शरीर में छाले पड़ गए और उन छालों से पस और रक्त बाहर आ रहा था.
And of course it was very irritating for Sanatan Goswami. They had an itching sensation.
और सनातन गोस्वामी के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही पीड़ित अवस्था थी, बार बार खारिश होना था छाले पर.
But when Sanatan Goswami came there to Jagannath Puri and Lord Chaitanya saw him, Lord Chaitanya came to embrace him.
और जब सनातन गोस्वामी पूरी पहुंचे और महाप्रभु ने उनको देखा तो महाप्रभु उनको आलिंगन करने के लिए आ गए.
सनातन गोस्वामी ऑफ कोर्स ही वाज नॉट एबल टू गो इनटू द टेंपल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग प्रीवियसली इन द सर्विस ऑफ द मोहम्मदंस.
सनातन गोस्वामी जगन्नाथ पुरी के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते थे क्योंकि इससे पहले वह मोहम्मदन की सेवा में नियुक्त थे.
सो ही वुड व्हेन ही केम टू पुरी ही वाज लिविंग ऑन द बीच इन बिसाइड हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर ऑफ कोर्स इज आल्सो बोर्न मोहम्मदन सो ही इज is also not eligible to enter the temple of Lord Jagannath.
तो जब वो पूरी गए तो समुद्र के तट पर ही निवास कर रहे थे हरिदास ठाकुर के सभी और हरिदास ठाकुर का जन्म भी एक मोहम्मदन परिवार में हुआ था इसलिए वो भी पूरी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे
But they were living from the place where they were living on the beach they could see the dome they could see the spire on top of the Lord Jagannath temple and it is said when you see that that is equivalent to having darshan
परंतु जब वो समुद्र के तट पर रहते थे तो वहां से मंदिर के चक्र का दर्शन करते थे और उसको बताया गया है वो भगवान कृष्ण विद्रोह के दर्शन के ही समान है
एंड इन एडिशन दे हैड द गुड फॉर्च्यून दैट लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वाज पर्सनली कमिंग टू सी देम एवरी डे एंड ही वुड ब्रिंग देम आल्सो प्रसाद
और उसके साथ साथ उनका इतना सौभाग्य था कि महाप्रभु स्वयं उनके निवास स्थान पर आते थे और जगन्नाथ जी का महाप्रसाद आते थे
So when Lord Chaitanya came, he embraced Haridas Thakur, and then he went to embrace Sanatana Goswami. But Sanatana Goswami moved back and said, No, no, don't touch me, I'm contaminated, I'm diseased.
जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी का आलिंगन करने के लिए बढ़े तो सनातन गोस्वामी तुरंत पीछे हट रहे कि नहीं नहीं मेरा मुझे मत छूइए मेरे बीमारी है
But Lord Chaitanya by force came and grabbed him and embraced him.
तो महाप्रभु ने जबरदस्ती उनको पकड़ के उसका आलिंगन कर दिया.
And Lord Chaitanya would do this daily, much to the pain of Sanatana Goswami.
और महाप्रभु ऐसा प्रतिदिन करते थे और ये देखकर सनातन गोस्वामी को बहुत दर्द होता था पीड़ा होती थी
So Sanatana Goswami happened to discuss this situation with person called Jagannanda Pandit.
तो सनातन गोस्वामी ने इस परिस्थिति को चर्चा की जगदानंद पंडित से
And Jagannanda Pandit is an unusual personality. He sometimes had some difficulties in his dealings with Lord Chaitanya.
तो जगदानंद पंडित बिल्कुल एक बहुत ही विचित्र कैरेक्टर है महाप्रभु की लीला में जिनको बहुत बार मुश्किल होती थी महाप्रभु से डील करने में
On one occasion, he wanted to give some nice blanket, pillow and blanket for Lord Chaitanya. But Lord Chaitanya said, no, no, I am sannyasi, I cannot use these things.
तो एक बार वो महाप्रभु को बहुत ही उच्च कोटि का तकिया और कंबल दान में देना चाहते थे पर महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं मैं सन्यासी हूँ मैं ये सब चीजें इस्तेमाल नहीं कर सकता
Another time he had sandalwood oil and he wanted to give Lord Chaitanya Mahaprabhu massage with sandalwood oil.
और एक
बार
उन्होंने महाप्रभु की मसाज के लिए चंदन का तेल दिया जितना कीमती है और महाप्रभु ने उसको लेने से इनकार कर दिया
जगदानंद पंडित वाज सो अपसेट ही थ्रू द ऑयल ऑन द ग्राउंड एंड ब्रोक द बॉटल
और जगदानंद पंडित इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने महाप्रभु के सामने वो सारा जो तेल था जमीन पर फेंक दिया और घड़े को तोड़ दिया
So anyway, Sanatana was discussing with Jagadananda Pandit about this situation that he felt very bad that Lord Chaitanya is coming and embracing him every day when his body is so contaminated.
So Sanatana Goswami Jagadananda Pandit के साथ इस परिस्थिति का चर्चा कर रहे थे कि उन्हें बहुत बुरा लगता था कि महाप्रभु किस प्रकार से प्रतिदिन आके उनका आलिंगन करते हैं.
So Jagadananda Pandit told Sanatana, he said, yes, he said, It might be better for you to go back to Vrindavan because that was the place Lord Chaitanya had given you and your brother to reside.
So Jagannanda Pandit ने सलाह दी कि उनके हिसाब से उन्हें वापस वृंदावन चले जाना चाहिए क्योंकि उनको और उनके भाई को महाप्रभु ने वही स्थान दिया है निवास करने के लिए.
And the Chaitanya Charitamrita, when they talk about this, and this is your Prabhudatta Desh. The place given by the master is very important. You're given a place by your spiritual master. You should stay there and work and develop it.
So, Chaitanya Charitamrita ki charcha aati hai ki kis prakar se jo Prabhu Data Desh, jo ek Swami ke dwara tha, apne Guru ke dwara shishya ko diya jata hai, wahin par rehkar usko sthan ko viksit karna chahiye.
So Sanatana Goswami hearing Jagadananda Pandit say like this, Sanatana said, yes, I think you're right. I agree with you. I think after the Rath Yatra festival, after I see Lord Jagannath, then I will leave here. I will go back to Vrindavan.
So सनातन गोस्वामी ने सलाह को सुनकर कहा कि हाँ मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिसके चरणपुरी रथ यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं वृंदावन लौट जाऊंगा।
So Sanatana Goswami then went to Lord Chaitanya Mahaprabhu and told Lord Chaitanya, please give me permission that I can go back to Vrindavan.
So Sanatana Goswami went to Chaitanya Mahaprabhu ke paas gaye aur unse anumati maangi ki kripya mujhe anumati de ki main Vrindavan wapas laut jaun.
And when Sanatana Goswami told Lord Chaitanya, he said that I have been given this advice by Jagadananda Pandit and I think it's a good thing.
गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मुझे ये सलाह चैतन्य पंडित ने दी है और मेरे साथ भी बिल्कुल अच्छी सलाह है।
So when Lord Chaitanya heard this, he became angry and he began to chastise Jagadananda Pandit. Who are you? You're just a young boy. You have no right to instruct Sanatana Goswami.
और जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सुना तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जगदानंद पंडित को डांटना शुरू कर दिया कि वो होता कौन है, वो युवक है और उसका कोई हक नहीं है सब तुम जैसे व्यक्ति को निर्देश देना।
You're just a neophyte in this devotional process. You don't know anything. Sanatana Goswami is way above you. You're instructing him. This is not right etiquette.
भक्ति के विषय में तुम बहुत नए हो और सनातन गोस्वामी तुमसे बहुत ऊपर है तो ये सही सदाचार नहीं है कि तुम सनातन गोस्वामी को निर्देश दो।
Lord Chaitanya was very much concerned that the devotees follow the etiquette of Vaishnava.
और चैतन्य महाप्रभु इस चीज को लेकर विशेष ध्यान देते थे कि सभी भक्त सदाचार का अच्छे से पालन करें।
In this matter, he had tested Sanatana Goswami earlier, and he'd seen how careful Sanatana Goswami was in observing the etiquette.
और इस मामले में उन्होंने सनातन गोस्वामी की परीक्षा भी ली थी और ये देखा था कि सनातन गोस्वामी कितनी बारीकी से वैष्णव सदाचार का पालन करते हैं।
So Lord Chaitanya Mahaprabhu expressed his disapproval that Jagadananda Pandit should not be giving advice to somebody like Sanatana Goswami.
तो उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की कि जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी को इस प्रकार की सलाह या निर्देश दे।
So when Sanatana Goswami heard Lord Chaitanya chastise Jagadananda Pandit, then Sanatana Goswami said, oh, Jagadananda Pandit is so fortunate that he has an intimate relationship with you.
And when Sanatana Goswami heard Chaitanya Mahaprabhu ko suna Jagadananda Pandit ko daantte hue, to unhone kaha ki, oh, aapka itna ghanishth sambandh hai Jagadananda Pandit se.
You would only chastise somebody who is one of your intimate associates. You are showing affection to Jagadananda Pandit.
क्योंकि आप के जो बहुत ही अंतरंग पार्षद हैं, आप सिर्फ उन्हीं को डांटेंगे और इस डांट से आपके हृदय में जो उनके लिए प्रेम है वो झलक रहा है।
Sanatana Goswami said, I'm not so fortunate. You're keeping me out of your association. I don't have the intimate relationship with you that Jagadananda Pandit has.
और सनातन गोस्वामी इस तरह पछताने लगे कि आपने मुझे अपने संघ से बाहर रखा है, जगदानंद पंडित की तरह मेरा आपसे वो इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है।
This was a similar situation what happened in a much earlier past time when Lord Chaitanya chastised the secretary of Advaita Acharya.
और इसी प्रकार की लीला महाप्रभु के शुरू के काल में आती है कि जब उन्होंने अद्वैत आचार्य के सेवक को डांटा।
The secretary of Advaita Acharya had written a note.
अद्वैत आचार्य के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक नोट लिखा था।
And he said Advaita Acharya is in debt 300 rupees.
अद्वैत आचार्य के 300 रुपए
करना है। So when Lord Chaitanya got that note, he was happy in one sense. Was it Advaita? The note said Advaita Acharya is the personality of Godhead, and he is in debt 300 rupees.
तो जब उन्होंने नोट पढ़ा महाप्रभु ने, नोट पढ़ के खुश भी हुए थे। उसमें लिखा था अद्वैत आचार्य भरत पुरुषोत्तम भगवान है और उनके ऊपर 300 रुपए का 300 समय की जो भी धनराशि थी उसका ऋण है।
So when Lord Chaitanya saw the note, he was pleased that, oh, yes, it's very good. He knows the personality of Godhead.
तो बहुत पसंद है कि हाँ ये तो ज्ञात है कि अद्वैत आचार्य भगवान ही है.
But when he saw his, that he's in debt 300 rupees, he said, this is not good, this is not correct. How can they go, someone who is the personality of Godhead in debt
300 rupees?
So Lord Chaitanya said, he, that person should not come in my association again.
तो महाप्रभु ने कहा कि जिसने भी लिखा है वो मेरे संघ में दोबारा ना आए.
So Advaita Acharya told Lord Chaitanya, this is not fair. You're giving him more mercy than I got.
तो जब Advaita Acharya ने सुना तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहां का न्याय है, आप उसको ज्यादा कृपा दे रहे हैं मुझसे.
You're punishing him more than you punish me.
आप उसको ज्यादा उसकी अवहेलना कर रहे हैं जितनी अवहेलना मैं से करते हैं.
Advaita Acharya said, when I preached the philosophy of Yoga Vasishta, you beat me, but you didn't ban me from your association. But my secretary only wrote this note, and you don't want him to come in your midst again, you don't want to see his face again. You're giving him more mercy than I got.
और मेरे सेक्रेटरी ने अभी सिर्फ एक नोट लिखा है और आपने इसको अपने संघ से इसका बहिष्कार कर दिया है, आपने इसको मुझसे ज्यादा कृपा प्रदान की है.
So similarly here with Sanatana Jagatananda Pandit, Sanatana Goswami saying to Lord Chaitanya, oh, you're so merciful to Jagatananda Pandit, you don't give me this mercy.
और उसी प्रकार हम देखते हैं सनातन गोस्वामी महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जगदानंद पंडित पे मुझसे कितने ज्यादा कृपालु हैं.
I cannot be one of your intimate associates. Jagadananda Pandit is more fortunate than me.
Jagadananda Pandit मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं. मैं उनकी तरह आपका इतना अंतरंग पार्षद नहीं बन पाया.
So Lord Chaitanya told them that Jagadananda is just like a young boy compared to you. You are much more realized and complete in knowledge of the Shastra and all the Vaishnava etiquette. You are like our guru. You give me advice even about the process of devotional service.
इस अंतर महाप्रभु ने कहा कि जगदानंद पंडित तो एक युवक है, बिल्कुल नए बच्चे की तरह है, पर आप शास्त्रों में इतने निपुण हैं और साक्षात्कार निश्चित हैं और आप सदाचार का इतने उसमें बहुत मैच्योर हैं. आप मुझे भक्ति की विधि के बारे में भी निर्देश दे सकते हैं.
Yeah, earlier, when Sanatana Goswami and Rupa Goswami met first with Lord Chaitanya Mahaprabhu at Ramakeli, at that time they had requested Lord Chaitanya, because Lord Chaitanya was going to Vrindavan, but he had a big crowd, there were many, many people all with him. So Rupa and Sanatana, they told Lord Chaitanya that this is not proper, you shouldn't go to Vrindavan with so many people.
इससे पहले रामकेली में जब महाप्रभु सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से मिले थे तब महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे थे और उनके साथ लाखों लाखों लोग थे. तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये ठीक नहीं है इतने सारे लोगों को साथ में लेकर वृंदावन चलना.
So Lord Chaitanya took this actually is correct, the Shastra said like that. Lord Chaitanya then didn't go to Vrindavan at that time. He took their advice.
और फिर महाप्रभु ने उनकी सलाह को गंभीरता से लिया और उनसे वो वृंदावन नहीं गए.
So Lord Chaitanya was telling Sanatana, actually, yeah, you're like my spiritual master, that your position is much, you're much above Jagadananda Pandit. He's no right to tell you what to do, to give you advice and tell you to go away and go back to Vrindavan. That's not correct.
और महाप्रभु सनातन गोस्वामी को यही कह रहे थे कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु के समान हैं, जगदानंद पंडित से तो आप बहुत ऊपर है, उनका कोई हक नहीं बनता आपको इस प्रकार से सलाह निर्देश देने का.
But Sanatana told Lord Chaitanya, I cannot bear the fact that you're coming and touching my diseased body and the blood from my sores is going on you. It's not proper. I'm being offensive in this way. If I stay here, you keep doing this to me. I'm offending you.
तो ये सुनकर सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि परंतु मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि आप प्रतिदिन आके जो मेरा ये शरीर है जिसमें इतनी बीमारी है और हर जगह से खून बह रहा है, पस बह रहा है, उसको आके आप आलिंगन कर लेते हैं, तो ये कितना मेरे को बहुत अपराध लग रहा है.
But Lord Chaitanya told Sanatana Goswami, said, no, I said, actually, he said, when I embrace you, he said, I can feel the aroma of Chatusana, on the aroma of all the different fragrant oils which is mixed together. I feel that I can smell the beautiful aroma coming from your body. And it's like nectar for me.
तो वहां बोलने का नहीं ऐसा नहीं है जब मैं तुम्हें आलिंगन करता हूँ तो जो चतु सुना जितने तेल है उनकी सुगंधित जो तेल है वो उसको मैं सूंघ पाता
हूँ Lord Chaitanya said, just like young baby may pass through, but the mother doesn't think it's obnoxious. You know, for the mother, you know, this is all nectar. Oh, baby is passed, you know. And she brings the child, you know, it's all pleasure for the mother.
और इसी प्रकार है जैसे कि एक छोटा बच्चा मलमूत्र त्यागता है तो उसकी माता को बिल्कुल बुरा नहीं लगता उसको ये देख के खुशी होती है उसको उसमें आनंद देती है
In the same way, I feel pleasure when I embrace your body. I don't think of it as being diseased.
उसी प्रकार से जब मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बीमारी है मुझे इसमें बहुत आनंद आता है
It's the business of with the elevated devotee, one who is on the transcendental platform, that they don't make any distinction between what is good and what is bad.
जो different स्थिति consciousness होते हैं वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते
They see everything the same. Samopandita darshana. Because they're on the transcendental platform, they see everything in relation to Krishna.
समपंडित दर्शन अब इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते क्योंकि दिव्य स्थिति पर वो हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखते हैं
वन इज नॉट सपोज टू मेक डिस्टिंक्शन अबाउट गुड एंड बैड क्वालिफाइड एंड अनक्वालिफाइड हाई क्लास एंड लो क्लास दिस इज ऑल बॉडीली डेसिग्नेशन दिस इज मटेरियल कॉन्शियसनेस
और इसी प्रकार से वो अच्छा बुरा योग्य अयोग्य उच्च श्रेणी नीचे की श्रेणी इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते ये सब बहुत ही खराब तत्पर है
जस्ट लाइक व्हेन वी लुक एट द डीटी वी शुड नॉट थिंक द डीटी इज मेड ऑफ मटेरियल एलिमेंट्स लाइक वुड और स्टोन
जिस प्रकार से हम अगर श्रीग्रह के दर्शन करते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भौतिक तत्वों से बने हुए हैं उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी से या पत्थर से
In the same way, we should not see the spiritual master as the ordinary person who takes birth.
और उसी प्रकार से आध्यात्मिक गुरु को साधारण पुरुष की तरह नहीं देखना चाहिए
Neither should we identify a Vaishnava, a devotee of the Lord, on the basis of the body.
और उसी प्रकार से भगवान के भक्त वैष्णव को शरीर के आधार पर उनका भेदभाव नहीं करना
The Shastra state that one who thinks in this way, then he is a resident in hell.
और शास्त्र ये बताते हैं जो इस प्रकार का भेदभाव करता है तो वो नर्क का निवासी है
So Lord Chaitanya Mahaprabhu was teaching both Haridas and Sanatana Goswami what is actually transcendental vision.
तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को ये बता रहे थे कि दिव्य
And it's the duty particularly of those of the renounced order of life, like Lord Chaitanya Mahaprabhu, that they should apply this principle in dealing with others.
And विशेषकर से जो सन्यास आश्रम में स्थित हैं, उनको इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए दूसरों के व्यवहार में
stated in Bhagavad Gita, Brahma Buddha Prasanatman Nasochati Nakanshati Samasarveshu Bhuteshu Mabhakti Mabhakti Param That you see all living entities equally because you don't see the body.
जैसे कि भगवत गीता में उदित है कि जो दिव्य स्तर पर है वो सभी को आध्यात्मिक स्तर पर देखता है वो क्योंकि वो शरीर नहीं आत्मा है
Sanatana Goswami was concerned that his bodily condition was, you know, offensive to Lord Chaitanya, but Lord Chaitanya did not consider any offense.
Sanatana Goswami चिंतित थे कि जो उनकी शरीर की हालत है वो भगवान के लिए अपराधजनक है परंतु भगवान ने उस बात को स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है
So Lord Chaitanya then came and again embraced Sanatana Goswami and immediately all the disease, all the itches, all the sores on his body
disappeared. तकलीफ तो सब गायब हो गए.
And Haridas Thakur said, ah, we can see this is all your lila. You arranged for Sanatan to drink that water in Jarakanda, and you arranged for these souls to develop in his body, just so that you could teach us the importance of developing transcendental vision.
So Haridas Thakur ne ye dekhkar kaha ki ha, ye aapki lila hai. Aapke prabandh se hi Sanatan Goswami ne Jharkhand mein wo pani piya, aur aapke prabandh se hi unko is prakar ki bimari hui, taki aap hame is vishay mein shiksha pradan kar sake.
Of course, that was one incident where Lord Chaitanya showed, taught to the devotees not to see people on the bodily platform. But another pastime which shows Lord Chaitanya applying this principle was when he embraced the leper Vasudeva.
तो महाप्रभु का ये एक प्रसंग आता है जहाँ पर वो शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार से देहात्मा कोठी में नहीं बैठना चाहिए. और एक अन्य लीला पर महाप्रभु ने स्वयं इस बात की पुष्टि की जब उन्होंने वासुदेव को आलिंगन किया जिन्हें कोर का रोग था.
Now we know when we see somebody's body diseased with leprosy, we think, oh, keep away from them. We move to the other side. We don't want to go too close because we're thinking that they're diseased. I might get it.
तो अगर किसी को कोर का रोग है तो साधारणतः हर कोई उनसे दूर रहना चाहता है क्योंकि सबको भय हो जाए कि उसका जो बीमारी है वो मेरे शरीर में ना आ जाए.
But Lord Chaitanya came and he embraced the leper Vasudeva.
परंतु जब महाप्रभु आए उन्होंने वासुदेव का आलिंगन कर दिया.
And when the leper Vasudeva was embraced, all the leprosy disappeared from his body.
और जब वासुदेव का इस प्रकार से आलिंगन किया तो जितना भी कोढ़ का रोग था उनके शरीर में तुरंत खत्म हो गया.
This person Vasudeva was actually a very advanced devotee. It's described that the worms which were eating his body, if they would fall out from his body, he would pick them up and put them back into his body.
तो वासुदेव बहुत ही भक्ति में उन्नत अवस्था में थे. बताया जाता है कि जब उनके शरीर में जो कोल्ड बीमारी थी उसे कीड़े नीचे गिरते थे तो वो उनको उठा के दोबारा शरीर में रख देते थे कि ये तो तुम्हारा भोजन है.
So when Lord Chaitanya embraced him and his body became it became rejuvenated and he became very good looking, very handsome young man. And he said, oh, he complained to Lord Chaitanya that now I will have difficulties. I may try to enjoy material life.
और जब इस प्रकार से आलिंगन करने के बाद वे तुरंत इतनी युवा शक्ति उनमें स्फुरित हो गई और बिल्कुल ठीक हो गए, बहुत ही सुंदर आकर्षक बन गए, तो उन्होंने महाप्रभु को शिकायत की कि आप मुझे दिक्कत होगी आपकी, मैं हो सकता है मैं इसका भौतिक रूप से भोग करने प्रारंभ कर दूं.
So Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed Vasudeva that yes, You may enjoy material life, you may think like that. Therefore, you have to constantly chant the holy name and preach Krishna consciousness everywhere.
और महाप्रभु ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि तुम आप भौतिक जीवन को भोग करने का प्रयास करो, इसलिए तुम्हें निरंतर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना है और कृष्ण भावनाओं का प्रचार करना है.
If we are constantly preaching Krishna consciousness and chanting the holy name, then the material energy cannot touch us.
अगर हम निरंतर रूप से निरंतर भाव से हम कृष्ण भावनाओं का प्रचार कर रहे हैं और हरिनाम का जप कर रहे हैं तो भौतिक शक्ति हमें छू नहीं सकती.
So all of these great descendants of Maharaj Janak, they were all liberated souls. They did not make any distinction between good and bad. They were all fully on the transcendental platform.
तो महाराज जनक के वंशावली में जितने ये राजा थे ये सब अध्यात्म ज्ञान में पटु थे, वो इस प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे.
Srila Prabhupada quotes a couple of other verses in the purport from Bhagavad Gita. First of all, Matras Pashas to Kuntiya, that he's talking about how we distinguish between summer, the winter and the summer seasons.
और तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद अन्य श्लोक उदित करते हैं भगवद गीता से पहले कि मात्र प्रशस्त पहुंचते हैं कि किस प्रकार से हम गर्मी और शीत में भेदभाव करते हैं.
We all have good experience here in Delhi, right? You get a very hot summer, you get a very cold winter. What do? You run away, go to South India in the winter, and go to Himalayas in the summer. No, you should stay here and just tolerate.
तो दिल्ली में हमारा बहुत अच्छा अनुभव है इस प्रकार का कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी में बहुत सर्दी. तो आप क्या करते हैं, सर्दी में दक्षिण भारत और गर्मी में हिमालय की ओर भाग जाते हैं? नहीं, आपको यही रहकर सहन करना
चाहिए.
तो हमें धीर बनना है, धीरज करता ना मोहयति, जो इस प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठे.
Now it's summer. It's not very pleasant to go in the kitchen and cook in the summer. But still they're cooking. Every day they operate. Every day there's prasadam. You have to cook.
तो अभी गर्मी का मौसम है और गर्मी में किचन में जाने बहुत तकलीफ होती है, परंतु फिर भी हर समय पर एक भोग बन रहा है.
And similarly, we may not like in the winter time taking bath. The water is a bit cold. At this time of the year, taking bath is a pleasure, but in the winter, it's not so pleasant.
और सर्दी के समय हो सकता है नहाने में बहुत तकलीफ होती हो. अभी गर्मी में नहाने में तो बहुत मजा आता है, परंतु सर्दी में बहुत समस्या लगता है.
But we have to do these things. We have to tolerate.
परंतु हमें इन सबको सहन करके ये सब करना चाहिए.
We have to train our mind to tolerate. Because these differences, thinking this is good, this is bad, this is all manodharma. This is the business of the mind.
तो हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए इनको सहन करने के लिए, क्योंकि ये सोचना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सब मनोकल्पना है.
For the soul, there is no pain or pleasure. For the soul, it's all absolute.
आत्मा के लिए किसी प्रकार का ये सुख और दुख नहीं है, उसके लिए ये एब्सोल्यूट है.
We're identifying with the material body. We have to transcend that consciousness, come to the spiritual platform. Therefore, you have to constantly chant Hare Krishna.
शरीर के साथ पहचान करने के कारण ही इस प्रकार के भेदभाव उत्पन्न होते हैं. तो हमें अपने देहात्म बुद्धि से, देहात्म चेतना से ऊपर उठना है. इसलिए हमें निरंतर भगवान के नामों का जप करना चाहिए.
The other verse called Yathasun Adatasun Cha. This is where Lord Krishna is chastising Arjuna. That, oh, you're speaking learned words, Arjuna. But those who are wise lament neither for the living nor the dead.
और एक अन्य श्लोक श्लोक भगवान ने उत्तर उदित किया, गदा सुना गदा सुनश्चर. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम बहुत ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, परंतु जो असली में पंडित होता है वो ना जीवित के लिए ना मृत के लिए शोक करता है.
We want to again bring the consciousness away from the body. The nature of the body is certainly miserable, so much suffering. But we're not the body. This body is just a dress.
तो हमें अपने चेतना को इस शरीर से दूर ले जाना है, क्योंकि निश्चित रूप से देहात्म स्तर पर ये बहुत ही दुखद पीड़ित अवस्था है.
At the same time, we have to take care of the body. Because it's given to us by Krishna.
और साथ ही साथ हमें शरीर का ध्यान भी रखना है, क्योंकि भगवान कृष्ण के द्वारा ही हमें प्रदान किया गया है.
We want to see everything in relation to Krishna. That is transcendental consciousness.
हम हर चीज को भगवान कृष्ण के संबंध में देखना चाहते हैं, ये दिव्य चेतना है.
We learn how to use everything in the service of Krishna.
किस प्रकार से हर चीज का इस्तेमाल भगवान कृष्ण की सेवा में किया जा सके.
And it begins by using our tongue to chant the holy name.
और इसका शुरुआत होती है अपनी जीवा का प्रयोग करके भगवान की सेवा में जब चयन करके.
Okay, we will ask any questions.
तो हम यहीं पर विराम देंगे, किसी का कोई प्रश्न है?
Yeah. Okay.
तो सनातन गोस्वामी ने ये बोला कि भगवान का उनका कोई व्यक्ति नहीं है. मैंने उनसे सलाह मांगा था, उन्होंने अपनी कोई सलाह अपने आप को नहीं दिया.
Asking when Lord Chaitanya was chastising Chaitanya Pandit, Sanatana Goswami did not say that he himself approached him and asked for his advice. He did not come and give advice out of his own accord. How to understand this?
Jagadananda Pandit gave the advice once.
Sanatana Goswami did not tell Mahaprabhu that he himself approached Jagadananda Pandit to seek his advice.
इनसेट जगदानंद पंडित हैड एडवाइस हिम.
तो उन्होंने कहा कि जगदानंद पंडित ने मुझे ये सलाह दी है.
Because Jagadananda Pandit saw Sanatana Goswami was feeling very unhappy, uncomfortable, because he, you know, feeling every day that Lord Chaitanya is coming and embracing me. So he was not happy about this. And Jagadananda Pandit could see that he was not happy.
So Jagadananda Pandit, ये देख रहे थे कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी बहुत तकलीफ में हैं, प्रतिदिन बहुत परेशान रहते हैं कि महाप्रभु आकर उनका लेखन करते हैं. तो जगदानंद पंडित जी जानते थे कि सनातन गोस्वामी बहुत पीड़ा में.
So Jagadananda Pandit wanted to understand the cause of his unhappiness, and Sanatana explained that he's watching and is embracing me.
So Jagadananda Pandit unki is dukhad avastha ka karan janna chahte the. To iske liye unse pucha tha, aur phir Sanatana Goswami ne samjhaya ki kis prakar se maan hua ke.
So then Jagadananda Pandit said, you know, you should go back to Vrindavan.
और जब उनकी ये बात सुनकर जगदानंद पंडित ने उन्हें सलाह दी कि तुम्हें वृंदावन वापस चले जाना चाहिए.
But actually, after Lord Chaitanya heard all this, then Lord Chaitanya told Sanatana, stay here for 1 year and don't go to Vrindavan until after 1 year, then you can go back to Vrindavan.
तो महाप्रभु से इस वार्तालाप के बाद महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें अभी वापस नहीं जाना वृंदावन, एक साल अगर तुम यही रहो पूरी में.
Mahaprabhu liked to have Sanatana Goswami there, truly wouldn't.
Mahaprabhu ko pata tha ki Sanatana Goswami puri mein the.
शक्तिशाली
शिक्षा है कि श्रवण करते समय हमें कितना सावधान होना चाहिए, कितने ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए.
So when you get the greater punishment, you remember more.
तो जब आपको जितनी बड़ी मात्रा में पनिशमेंट मिलेगी उतना लंबा आपको याद रहेगा.
Remember it slow.
स्कूल के दिन याद है तो
समझेंगे. Teacher said, you don't forget this beating.
काल शिक्षक कहते थे तुम इस मार को कभी नहीं भूलोगे.
दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इट मीन्स लाइक महाप्रभु रिजेक्टेड दैट पर्सन दैट डिवोटी. सो इज इट लाइक रिजेक्टिंग बीइंग रिजेक्टेड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर. इट्स नॉट वर्थी. लाइक chastisement, punishment in form of chastisement can be mercy, but like rejecting that person altogether, how is that mercy?
Well, of course.
तो प्रजी पूछ रहे हैं कि इस प्रकार की जो chastisement है तो अच्छा है, परंतु यहाँ देखते हैं कि उनका संघ से ही बहिष्कार कर दिया, तो इसको कैसे समझेंगे कृपा करो.
Lord Chaitanya wants to instruct the devotees on what is the proper etiquette. And how we have to be very careful in their dealings.
Shri Chaitanya Mahaprabhu bhakton ko ye nirdesh shiksha dena chahte hain sahi sadachar ke bare mein.
Of course, Lord Chaitanya is also ocean of mercy. Although he also forgave Kamalakanta Vishwasa. When Advaita Acharya complained like that, then Lord Chaitanya smiled and he said, "All right, call him here." And he brought Kamalakanta and Lord Chaitanya instructed.
तो श्री चैतन्य महाप्रभु साहब की कृपा के महासागर भी हैं और अद्वैत आचार्य ने जब इस प्रकार की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ मेरे सामने और उसको क्षमा कर दिया.
आई रिमेम्बर वन टाइम इन कोलकाता वी हैड इट वाज एकादशी एंड प्रॉपर वाज देयर एंड वी एट समहाउ द कुक बीन्स एंड वी ऑल एट बीन्स एंड प्रॉपर दे टोक प्रॉपर जयंत ठाकुर महाराज वेंट टू टेल प्रॉपर. Prophecy was very angry. You all have to fast for 3 days.
तो महाराज कह रहे मुझे याद है कि कलकत्ता में एक बार प्रॉपर वहां पर उपस्थित थे तो एक आशी का दिन था और कुक ने बीस बना दी थी तो सबने वो भोजन ग्रहण कर लिया और फिर बाद में जाकर कलकत्ता का महाराज ने प्रॉपर जी को ही बताया कि कल वाले दिन हमने ऐसा भोजन किया. तो प्रॉपर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि आप सबको अगले 3 दिन तक उपाल करना.
But then practice it. Tomorrow you have to observe it.
Then Prabhupada ne kaha kam se kam kal to rakhna hi.
First he was saying 3 days, you fast for 3 days.
They
want to impress on us how important it is, you know, how careful we should be.
तो श्रीला प्रभुपाल हम पर ये जोर डाल के देना बताना चाहते थे कि कितना महत्वपूर्ण है, कितने सावधान हमें होना चाहिए.
So similarly, Lord Chaitanya is giving a heavy punishment. Oh, it's mercy.
तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतनी भारी रूप से पनिशमेंट दे रहे हैं, इसलिए वो कृपा है.
You won't forget that again. You won't make that mistake again.
कि आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे.
Maharaj said that thousands of people were going to Vrindavan with Chaitanya Mahaprabhu, and then Sanatana Goswami said that we should not take so many people to Vrindavan. So, I mean, if you can make us understand what is the reason behind it, because we go to Mayapur with so many, I mean, Parikrama, the Mayapur is completely filled with devotees and so many people, no place to even step up. On a
place
sometimes. So what's the
reason? Yes, good question. Anyway, that's what the scriptures say. You go to the holy place, you know.
तो पहली तो प्रश्न है कि सनातन गोस्वामी ने क्यों मना किया महाप्रभु को इतने सारे भक्तों के साथ वृंदावन में जाके दर्शन करने के लिए. हम देखते हैं मायापुर वृंदावन परिक्रमा में तो हम देखते हैं लाखों लाखों भक्त आते हैं, तो इस प्रकार का क्यों सनातन.
they have to be careful. They go to the holy place, you bring a lot of people, and people may not know the importance of the holy place, and they commit offenses here. It's a big responsibility.
माना चला रहे हैं कि इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए जितने लोगों को आप धाम लेके जाए. हो सकता है लोगों को धाम की महिमा के बारे में ना पता हो और वहां पे बहुत सारे अपराध करें, तो आप जिम्मेदार रह जाए जितने जितने लोगों को लेके जाए.
So people going to the holy place, they should be serious, they should be, you know, a little understanding about the significance of this place.
तो इसलिए जितने लोग धाम जा रहे हैं तो उनको गंभीर होना चाहिए और वहां की महत्वता के बारे में ज्ञान होना चाहिए.
Also, you bring a lot of people to the holy place. It's a big responsibility. You got to take care of them and look after them and tell them everything. You don't get a chance to really absorb your own self in the holy place.
और जब आप इतने सारे भक्तों को साथ लेके जाते हैं तो आपको उनका ध्यान रखना होता है और उसको बताना पड़ता है, कदम में निर्देश देना होता है, तो आप अपना खुद पर इतना ध्यान नहीं दे पाते.
When you go alone, then you can, you know, you can go deeper, you can be more meditative, you have time to chant also. And, but if you go with a lot of people, it's a big, big
headache.
Yes, Prabhu.
Thank you, Maharaj. As you were speaking about the importance of bringing consciousness away from the body to laptop, and simultaneously, what I could get from the last, as Mahaprabhu advised possibly regarding the importance of chanting, increasing Krishna consciousness. But I was just thinking and wanted your thoughts on it, that how does Jesus help one to bring consciousness away from this body? Something is to keep it away. I mean, if we do it in the proper way, if we chant and preach in the proper way, how does this be attracted to it? This it does work, but when it comes back, the consciousness is back in the body, that only one has to see the cause of happiness, after using them, after concerns of the distress, this comes back and back again. So how does it work?
Uh-huh. Yeah, good question. Well, it's actually, if you do it, you'll actually feel the effect. The more we chant and the more we're telling people about Krishna, the more we will feel the connection to Krishna. And when we're connected to Krishna, that automatically follows detachment from the body.
The Pratita Prashna ki Nisprakar Sahasra bataya, Vasudev Mitra ko Mahaprabhu ne nirdesh diya ki nirantar harinam aur Krishna Mahadev ke prachar se aap apni chetna ko dehatmak desh se dur rakh sakte hain, adhyatmik dharatan par rakh sakte hain. आपकी विचार जानना चाह रहा था कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि हम प्रयास करते हैं परंतु बार बार जो चेतना है देहात्म स्तर पर वापस आ जाती है, तो ये सारी चीजें किस प्रकार से कार्य करती हैं. तो महाराज ने उत्तर दिया कि अगर आप वास्तविकता में प्रयास करेंगे तो आप उसका जो प्रभाव है उसको आप अनुभव कर पाएंगे, और जितना आप भगवान के नामों का जप करेंगे उतना भगवान कृष्ण के संपर्क में रहेंगे या भगवान कृष्ण की महिमा गान करेंगे, प्रचार करेंगे, और जितना भगवान कृष्ण के संपर्क में रहेंगे तो वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा.
The Shastra gives the example, just like when a hungry person eats food, then you feel strength and nourishment and relief from hunger.
शास्त्र उदाहरण देता है कि जब आप भोजन करते हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से आपको शक्ति मिलती है, आपको पुष्टि होती है और आपकी जो भूख है वो खत्म होती है.
In a similar way, when we are chanting Hare Krishna and engaged in the service of Krishna, we will also feel detachment from the material things.
तो इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण का जप करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, तो आपको स्वाभाविक रूप से आप भौतिक पदार्थों से वैराग्य आपका अनुभव
होगा. Because we're chanting and you're preaching, how can you think about the body? Yet, you know, these things are just forgotten about. You transcend all the bodily conditions of transcending the more we're chanting and preaching.
तो जितना ज्यादा आप जप कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, तो आप जब आप प्रचार करते समय देह के बारे में कैसे सोच सकते हैं? आप उससे ऊपर ही उठे.
Someone may be in the most unhealthy, unpleasant physical condition, but if they're chanting Hare Krishna and talking about Krishna, they can be blissful.
तो हो सकता है कि कोई बहुत ही खराब स्वास्थ्य में हो और बहुत ही विषम परिस्थिति में हो, परंतु अगर वो हरे कृष्ण नामक का जप कर रहा है और कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहा है, तो वो आनंद से तैर सकता है.
So he saw Prabhupada in his physical condition, when in his final year his physical health was very bad. But he was physically, he was always chanting and preaching Krishna consciousness. He was able to transcend his physical condition.
अब देखते हैं प्रभुपाद जी के अंतिम वर्षों में जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, वो किस प्रकार से भगवान के नामों का जप करते रहते थे और सदैव भगवान के प्रचार में नियुक्त थे.
We've seen similar things with many other devotees.
और इस प्रकार की चीजें हमने और कई भक्तों में देखने को मिलती है.
The power of the holy name brings us out of the bodily conception of life.
तो जो हरिनाम की शक्ति है वो हमें देहात्म चेतना से मुक्त करती है.
We're connected, we feel the connection to Krishna, we can feel the power of the holy name. We cannot be thinking about the body at the same time chanting Hare Krishna. Of course, chanting should be done without offense. When we do the chanting properly, then we give up any thought about the bodily, physical condition.
So, Bhagavan Krishna ke saath jo hamara sampark hai, unke saath jo sambandh hai, usko hum vikasit karte hain. और निश्चित रूप से जब को ठीक रूप से करना चाहिए तब ये सारी चीजें.
The proof of the pudding is in anything. You just do it. You try this. Are you chanting 16 rounds? Yes. And so every day you chant. So you should feel this strength. You know, if you're chanting with proper care and attention, you should feel detachment from the material situation.
तो भोजन का स्वाद खाने में है, जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना स्वाद है.
At the same time, a devotee is not irresponsible. You have some duties, you have some responsibilities, you take care of them. But you do it as a service to Krishna.
और साथ ही साथ कोई भक्त एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति की तरह नहीं होता. अगर आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें भगवान कृष्ण की सेवा के रूप में.
It's not material because you're chanting Hare Krishna. So all the things which you're doing, they're also connected in the service of.
तो वो भौतिक नहीं है क्योंकि आप हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, अन्य जितनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं भगवान कृष्ण से संबंधित है.
Devotees are running a big society, they have so many things to take care of, accounts and so many things to take care of, building maintenance, to take care of devotee problems and so many things. We could think of it as material, but it's not material, it's all transcendental.
तो भक्त इतना बड़ा एक समाज एक संस्था चला रहे हैं, तो उसमें इतने सारे प्रकार की चीजें हैं जैसे अकाउंट्स देखना, तो हो सकता है लोगों को लगे कि ये बहुत ही रूप है, परंतु ऐसा नहीं है. ये सब आध्यात्मिक है क्योंकि कृष्ण से जुड़ी हुई है.
ओके, लास्ट क्वेश्चन.
आखिरी प्रश्न आज का.
Spirit soul was there, right? The spirit soul there. So the spirit soul has also senses and can communicate.
क्योंकि वहाँ पर वो आत्मा थे और आत्मा जी की आध्यात्मिक इंद्रियाएं होती हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से उन्होंने ये कम्युनिकेशन किया.
This whole, this is the source of consciousness. The body, a dead body can't speak because there's no soul in the body.
तो शरीर नहीं बोल सकता अगर उसमें चेतना नहीं है, आत्मा नहीं है.
So the power to speak is coming from the soul.
तो जो बोलने की शक्ति है वो कहाँ से आ रही है? वो आत्मा से आ रही
है. When the soul leaves the body, it doesn't speak anymore.
तो जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है तो शरीर कुछ भी नहीं करता.
So we could understand maybe Nini's soul was still there in the body, hadn't landed yet, although the body appeared to be dead.
तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो महाराज जी की जो आत्मा है वो नहीं पर उपस्थित थी, हालांकि वो शरीर छोड़ चुकी थी.
Because Srimad Bhagavatam clearly states how Niniraj expressed his intention that he didn't want to take, come back to life.
श्रीमद् भागवतम स्पष्ट रूप से ये उल्लेख करता है कि किस प्रकार से निमि महाराज ने जो उनके भावधर्म की अभिव्यक्ति की तो दोबारा उस बॉडी देव नहीं आना चाहिए.
Okay, Srimad Bhagavatam ki
jai,
Srila Prabhupada ki
jai.